ओम शांति। भाग्यशाली हैं आप सभी जो पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली जो बाबा के ऐसे पुराने अनमोल रतन आप सबकी झोली भरने के लिए, स्नेह की पालना देने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। ऐसे आदरणीय राजू भाई जो बाबा के साकार बाबा के हाथों से पले हुए, बड़ी दीदी की प्रेरणाओं से आगे बढ़े हुए आज हमारे बीच हैं। बाबा कहते, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। कोई ऐसी ज्ञान की बुलबुल जो टिकलो टिकलो करती रहे, ऐसी बुलबुल बनकर दिखाए। तो राजू भाई हमें ऐसी ही सेवाएं अपनी दे, मुरली में कितने अखट खजाने बाबा देता है। मुरली पर मेहनत करना, मुरली में प्रश्न उत्तर आते हैं, वरदान आता है, स्लोगन आते हैं, सारी आपकी मेहनत जो बाबा ने आपको सिखाया, दीदी ने सिखाया, और आज आप उससे हमारी सबकी पालना कर रहे हैं। राजू भाई बहुत पुराने, लगभग 48-50 वर्षों से ज्ञान में हैं और बाल्यावस्था से ही मधुबन में आ गए। मैं तो कहूंगी मैंने तो शुरू से आपको मधुबन में ही देखा है। और इसी कार्य में बाबा का ज्ञान अनेकों को मिले, इसी कार्य में आप शुरू से लगे हुए हैं और आज हम सबकी भी पालना इसी विषय पर करने जा रहे हैं, ज्ञान और योग की गहराई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। बाबा के इस तपोभूमि में, चरित्र भूमि में, साकार कर्म भूमि में तपस्या करने का सौभाग्य मिलना एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। आप सभी इतने सुंदर वातावरण के बीच पांडव भवन में योग की भट्टी कर रहे हैं, इसका अपना ही आनंद है। जहां पर स्वयं इस हाल के अंदर अव्यक्त बाबा ने हम बच्चों को बहुत पालना दी, दादियों की बहुत पालना मिली। 74 में हाल बना था, 74 से लेकर के जब तक ओम शांति भवन बना 83 में, तब तक इसी हाल के अंदर बाबा की हर तीसरे चौथे दिन पधरामनी होती थी। और ड्रामा में मुझे भी बाबा के अंग संग बैठने का, लिखने का सौभाग्य मिला। तो बाबा यहाँ गद्दी पर आते थे और मैं इधर बाजू में बैठ करके पूरी रात बिना ब्रेक 7 बजे बाबा आए और सुबह 7-8 बजे तक बैठे। 12 घंटा 13 घंटा लगातार एक एक बच्चे को, एक एक ग्रुप को मिलना, वरदान देना, ज्ञान रत्नों से सजाना, वो दिन भी कितने प्यारे थे। किसी ने इस मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिलन मनाया है कोई ऐसा? अच्छा हैं, काफी हैं पुराने। उसके बाद ओम शांति भवन में आना शुरू हुआ। उसके पहले जब यह हाल नहीं था तो बाबा अधिकतर अपने कमरे में आते थे, छोटा कमरा है ना, कमरे में। अभी तो बड़ा बना दिया इसको तोड़ के, लेकिन उस समय बहुत छोटा कमरा था, गद्दी और चारपाई और थोड़ा सा एक बैठक के लिए सोफा था। तो उस कमरे में बाबा आते थे और हम लोग केवल 30-40 लोग रात भर मिलते थे। एक आधा ग्रुप आ गया, उससे बाबा बैठे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री हॉल में बाबा बीच में गद्दी पर आते थे, ऊपर यानी बीच में गद्दी लगाते थे, नीचे भोग नहीं रखते थे, ऐसे ही बुलाते थे बाबा को। तो वो दिन भी प्यारे थे और अभी भी अव्यक्त रूप में हम सबको बाबा की कितनी पालना मिल रही है। पालना का रिटर्न क्या, दादी ने इस बार अच्छा प्रश्न किया। 25 अगस्त को जब दादी की पधरामनी हुई तो यही शब्द पहले पहले उच्चारण किए कि बाबा ने जितनी पालना दी है, जितना प्यार दिया है, उम्मीदें रखी हैं, उसका रिटर्न अभी कम है। अटेंशन दो, रिटर्न करो। रिटर्न क्या करेंगे, बाप समान बने। बाबा ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही हम सबके आगे अपनी श्रेष्ठ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, ब्रह्मा बाबा की जीवन ही हमारे आगे एक बहुत सुंदर आईना है, दर्पण है, कसौटी है। अगर हम बाबा की जीवन को देखते रहें तो हमारी जीवन वैसी ही बन जाएगी। गीत है ना, तुझे देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। क्या देखता रहूं, सिर्फ शकल देखता रहूं? बाबा ने क्या क्या किया है, कैसे बच्चों को अलौकिक जन्म दिया, कैसे ज्ञान योग की पालना दी, कैसे अपने जीवन को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाया, कैसे त्याग तपस्या की मूर्ति बन करके रहे, कैसे व्यक्त में होते अव्यक्त बन गए, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति बनाई, ये सब ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया, करके दिखाया। और हमारी दादियों ने उसको रूबरू फुल फुल कदम पर कदम रख करके फॉलो किया। तो अब हम सभी को बाबा की पालना का ये रिटर्न करना है, जैसा बाबा चाहता है। बाबा मुरली के अंदर हम सबको चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। चार सब्जेक्ट बहुत सहज पढ़ाई है, मेहनत वाली नहीं है, भारी नहीं है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स नहीं है, पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ाई भी एक ही है। चाहे वो 10 साल 5 साल वाला बच्चा है, चाहे 50-60 साल वाला है, सबके लिए की मुरली पढ़ाई है। और चार ही सब्जेक्ट बाबा पढ़ा रहा है। सिर्फ हम बच्चों को जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसकी गहराई को समझें और उसको जीवन में उतार लें। बस 2-3 दिन पहले बाबा कह रहे थे, कई बच्चे कहते हैं मुरली तो रिपीट होती है, मुरली तो वही है, लेकिन क्या आप बच्चों ने उस मुरली को अपने जीवन में धारण कर लिया है, बने हुए ऐसा? तो बाबा हम सबको बार बार इसलिए तो सुनाता है कि ऐसे बन जाओ। तो ज्ञान की सब्जेक्ट में हम सब जितनी पॉइंट्स सुन रहे हैं उसको समाने की विधि क्या है, जिस स्वरूप की पॉइंट सुनते हैं। मान लो बाबा हमको कहता है आप एक निराकार स्वरूप में आत्मा हो, ये बाबा का ज्ञान हम सबको मिला और इस ज्ञान को हम सबने समझा कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा समझ करके मैं कितना समय बात करता हूँ, कितना समय मैं कर्म करता हूँ, कितना समय मैं इस देह भान से न्यारा रहता हूँ, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो ज्ञान की सब्जेक्ट जो हमें बाबा ने पढ़ाई है, ज्ञान माना समझ, स्वयं की पहचान दी, अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी, श्रेष्ठ कर्मों की पहचान दी, बहुत डिटेल में बाबा ने हम सबको एक एक बच्चे को नॉलेज फुल बनाया है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ज्ञान में कोई कमी रखी हो, सबको भरपूर ज्ञान है, लेकिन उसको स्वरूप में हरेक ने नंबर वाल लाया है। जितना जिसने अपने स्वरूप में उतार लिया वो बाबा का प्रिय बच्चा ज्ञानी तू आत्मा बन गया। कहते हैं ना, भगवान गीता में भी कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। तो योगी नहीं है क्या? योगी भी प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी से योगी बने, बिना ज्ञानी बने योगी नहीं। योग तो दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन जो बाबा ने हम सबको सहज राजयोग सिखाया है, उस सहज राजयोग का आधार है ज्ञान, और वो ज्ञान स्वयं का, घर का और बाबा का, स्वधर्म का, चार चीजों का ज्ञान मिला हमको। अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वधर्म का ज्ञान, अपने स्वदेश का ज्ञान और अपने स्वपिता का ज्ञान। और उस ज्ञान को हम लोगों ने यथार्थ रीति से समझ करके, जिसने यथार्थ रीति से समझ लिया उसकी निशानी क्या होगी? उसकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि तब तक भटकती है जब तक सही दिशा में मंजिल नहीं पहुंचते। जब पहचान मिल गई, यही बाबा है, यही मेरा घर है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वधर्म है, तो भटकना बंद हो गया। तो इसलिए ज्ञान की गहराई, ज्ञान हमें ये सब्जेक्ट सिखाता है, ज्ञान सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट ये है कि हम सब ज्ञानी तु आत्माएं समय को पहचान करके किसी भी बंधन में न बंधे, कोई भी नया बंधन अब क्रिएट न हो। जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं उनको सब कुछ पता है, ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम जन्म है, अंत के अंत में हम सब पहुंच चुके हैं, ये नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है, सब हिसाब किताब चुक तो करने हैं, और जिस स्वरूप में हम आए थे उसी स्वरूप में जाना है। ज्ञान है ना, ये सब ये ज्ञान है, और इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हम सबको पढ़ा करके, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना लाइट। जो आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं उनको कहीं पर भी ठोकर नहीं मिल सकती, धक्के नहीं लग सकते, लाइट है ना। जैसे लाइट होती है, आपके पास अगर लाइट है तो आप कहीं भी जंगल में चले जाएं, आपके ऊपर भयानक शत्रु जानवर अटैक नहीं कर पाएगा, लाइट है, लाइट से डरता है वो, अंधेरे में वार करता है। अगर लाइट है तो कोई शत्रु जानवर भी अटैक नहीं करता, लाइट है तो कहीं पर भी ठोकरे नहीं लगती, भटकते नहीं है, रास्ते का पता चल जाता। तो बाबा ने हम सबको जो ज्ञान की लाइट दी है, सोचना क्या मैं आत्मा धोखा खाने से, ठोकर खाने से बच गई हूं, या अभी भी लग रही है चलते चलते, कभी पारिवारिक रूप में, कभी सामाजिक रूप में, कभी आर्थिक रूप में, कहीं ना कहीं से ठोकर लग जाती, धोखा खा लेते, कहते हम तो पहचान नहीं पाए। कई ज्ञानी तो आत्माएं भी एक दूसरे के भावना में आकर के, एक दूसरे को ऐसी मदद करते, ऐसा सहयोग देते, और फिर जब उसका रिटर्न उनको नहीं मिलता तो कहते मैंने तो सोचा नहीं था ये भी मेरे साथ ऐसा करेगा, ये तो धोखा हो गया, मैंने परख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। बाबा हम सबको बहुत सूक्ष्म बुद्धि देता है, दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि के अंदर हर बात, जैसे कोई भी पेपर आने वाला होता है ना, आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, और गणेश चतुर्थी के समय कल बहुत चारों तरफ से गणेश जी की पूजा हो रही थी, विघ्न विनाशक के रूप में, सिद्धि नायक के रूप में, हम गणेश को बहुत सब याद करते हैं, ऐसी आत्मा बाबा कहते मेरे सब बच्चे कौन है, हैं शिव के पुत्र। हम सभी को बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है, गणेश को विद्यापति कहते हैं, नॉलेजफुल। और जो नॉलेजफुल आत्मा है, जो गणेश की जो उपमा मिली है, उसको विघ्न विनाशक करके हरेक अपने हर कार्य के शुभ आरंभ में उसका एक स्वास्तिका निकालता है, उसकी मूर्ति की पूजा करता है, गणेशाय नमः करके शुरुआत करता है कार्य की, ताकि कोई भी विघ्न ना आए। तो बाबा भी हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। ये जो हाथी की सूंड या भी बड़ा मस्तक दिखाया है, ये विशालता की निशानी है, दिव्य बुद्धि की निशानी है। बहुत लंबी जो हमारी सूंड है, पूछ जिसको हम कहें, सूंड है वो परखने की शक्ति है। कोई भी पेपर आने वाला है परख लेता है, और सिर्फ परखता नहीं है, फूंकता है, फूंक करके उसको हटाता है, साफ करता रास्ते को। और कितना पावरफुल सूंड है जो बड़े बड़े झाड़ों को भी उखाड़ दे, कोई भी बड़ा पेपर हाथी जैसा बहुत बड़ा भयानक पेपर भी आ जाए, उसको भी सहज सूंड से पार कर देता है। तो बाबा ने हम सबको श्री गणेश की उपमा दी है, ध्यान रखना कोई चींटी अंदर कान में न चली जाए, बहुत बेहोश कर देती है, इसलिए फूंक फूंक करके चलता है। वैसे तो बहुत निर्भय है, निश्चिंत है, कितने भी भौंकने वाले आए सामने परवाह नहीं करता, मस्त चाल है, लेकिन चींटी से थोड़ा डरता है, इसलिए क्या करता है, फूंकता है पहले, फिर पैर रखता है, आगे बढ़ाता है, क्योंकि चींटी अगर कान में चली गई तो बेहोश कर देगी। तो ये जो छोटी छोटी ब्राह्मण परिवार में बातें होती हैं, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो बहुत समझ करके चलती हैं, कभी भी उनकी परवाह नहीं करती, कान में नहीं जाने देती। इसलिए बाबा कहता बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, कोई भी ऐसी बात किसी के लिए भी कहे, बड़े के लिए कहे, साथियों के लिए कहे, नियमित आत्माओं के लिए कहे, जब हमने कोई बात देखी नहीं है। और बाबा कहता है अगर तुमने देखी भी सुनी भी तो तुम अपने मन के अंदर क्यों उस बात को लेते हो, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, तुम अपने आप को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। इसलिए कभी भी कोई भी बातें अगर सुनाई दें, दिखाई दें, तो ज्ञानी तो आत्माएं सेकंड में फुल स्टॉप लगा देती, उसका चिंतन नहीं करती, उसका वर्णन नहीं करती, उसका विस्तार नहीं करती, बल्कि सार स्वरूप को समझ करके चलती हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो ऐसी ज्ञान की जो गहराई है, बाबा ने हम सबको ड्रामा का इतना अच्छा ज्ञान दिया है जो हर पल हमको सुरक्षित कर देता। आज भी बाबा ने कहा बच्चे जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, ड्रामा में कोई भी बुराई है ही नहीं, सब अच्छा है। और इतना ऊंचा ज्ञान दे करके अगर कोई बच्चे बाबा के कोई भी सीन देख करके मन को उलझा दें, डिस्टर्ब कर दें, परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं, तो बाबा क्या कहेगा, इसको ज्ञान है? जैसे अज्ञानी आत्मा है ऐसे ये छोटी छोटी बातों में मूंझ गए, उलझ गए, डिस्टर्ब हो गए, खुद भी डिस्टर्ब हो गए, परिवार को भी डिस्टर्ब कर दिया, अपना भी समय व्यर्थ किया, दूसरों का भी कर दिया। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना बहुत समझदार, हर दृश्य को देख करके बहुत न्यारी और प्यारी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना और खुद दृष्टांत रूप बन जाना। तीन स्थितियां हैं हमारी ज्ञानी तो आत्मा की। नॉलेजफुल चीज अलग है, माना वो नॉलेजफुल जो आत्मा है वो एक त्रिकालदर्शी है। अभी बाबा को देखो, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप दादा उलझा दादी के तन में आते हैं। बाबा को हर बात का नॉलेज है, नॉलेजफुल है, यज्ञ में कैसे वृद्धि हो रही है, यज्ञ में क्या क्या हो रहा है, कौन कैसा चल रहा है, कहाँ क्या विघ्न है, नहीं जानता है क्या? उसका यज्ञ है, उसका कार्य है, बाबा सब कुछ जानता है, नॉलेजफुल है, लेकिन त्रिकालदर्शी होने के कारण वर्तमान पर ध्यान नहीं देता कि बच्चा अगर आज कोई नटखट है, अगर कोई आज डिस्टर्ब भी है, कोई कारण से माया के परवश भी है, तो भी विजयी तो यही था, यही बनेगा, कितना नॉलेजफुल है। त्रिकालदर्शी स्टेज है कि पास्ट में भी था, आने वाले कल में भी यही बनेगा, वर्तमान समय को इसके आगे हिसाब किताब है, इसलिए बाबा उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं देखता है। वही ज्ञान, वही शिक्षाएं, वही पालना देता कि यही तो बना था, इसको ही तो मैंने बनाया था। तो त्रिकालदर्शी स्टेज होने के कारण बहुत निश्चिंत है, बहुत हर्षित है, एकदम एक रस है। ऐसे है ना? नहीं, बाबा के कभी रस में कभी उसके मूड में परिवर्तन देखा है? अव्यक्त बाबा की पालना तो सबने ली है ना, अव्यक्त बाबा के पार्ट को भी हम सबने नोट किया है, देखा है, नजदीक से देखा है। कितनी भी बड़ी बातें बाबा को सुनाई जाती हैं, बाबा एकदम मुस्कुराता है, चेहरे पर कभी भी नहीं आता हाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, इसने ऐसा किया, मुस्कुरा देता, ठीक है, बहुत अच्छा, सब ठीक है। कैसे ऐसी स्थिति बना ली? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ त्रिकालदर्शी स्टेज है, और त्रिकालदर्शी स्टेज के साथ बहुत साक्षी दृष्टा है। किसी के पार्ट को देख करके अपनी स्थिति को बिगाड़ ना माना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। साक्षी दृष्टा स्टेज इतनी ऊंची है ज्ञानी तू आत्मा की, हर एक आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, अच्छा है या बुरा हमारे नजरों में, लेकिन वो अपने तरफ से ठीक से अच्छे से अच्छा पार्ट बजा रही है। इसलिए मुझे उसके पार्ट को देख करके अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना, बहुत न्यारी होकर के साक्षी स्टेज। जैसे आप सबने देखा होगा रामायण चली, महाभारत चली, बहुत सारे सीरियल्स न्यूज टीवी में आए, तो उसमें बहुत भिन्न भिन्न हर एक एक्टर्स को पार्ट मिले, और वो पार्टधारियों ने अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजाने का प्रयास किया। साकार में कभी वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टधारियों ने इस पार्ट को साकार करके दिखाया, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और ऐसा अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने का प्रयास किया जो कोई ये न कहे कि रावण का पार्ट इसने ठीक नहीं बजाया, या हनुमान जी ने अपना हनुमान का पार्ट ठीक नहीं बजाया। सब क्या कहते हैं, वाह वाह बड़ा अच्छा पार्ट, रावण के पार्ट को फर्स्ट प्राइज दे दी, कैसे सुंदर सीतारण किया, कितना ऊंचा डायलॉग, कैसे वो समान था, उसको अभिमान था, तो उसके पार्ट को बहुत लोगों ने सराहा। पार्टधारी का पार्ट साक्षी होकर के सभी ने देखा। अगर कोई ऐसा होता, एक बार की हंसी की बात सुनाता हूं, इसी हाल के अंदर जब रामायण चल रही थी तो मधुबन के भाइयों ने कुछ, एक ने कहा दादी आजकल रामायण की बड़ी चर्चा है, हमको भी रामायण दिखाओ ना एक दिन, बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, चलो आज एक दिन देखो, कोई हर्जा नहीं। तो यहां पर टीवी रखी गई इधर, और यहां पर हम सब बैठ गए आके सामने, क्लास में तो कम आते लेकिन टीवी देखने तो सब आ गए। तो जब आ गए सभी, तो उस दिन एक दृश्य था रामायण का, वो जब सीता हरण हुआ ना, तो राम विलाप का दृश्य था, और वो विलाप का दृश्य इतना रुलाने वाला था जो देखे वो रो जाए। जब राम उसको सीता को ढूंढ रहा है इधर उधर जंगल जंगल में, तो वो देख करके कई भाई जो यहां बैठे थे उनके आंखों में आंसू आ गए, और ऐसा आ गए जैसे कोई रियल दृश्य देख रहे हूं। और दादी ने देख लिया, दादी ने कहा आज से रामायण नहीं देखनी है, बंद, इनको पता ही नहीं ये पार्टधारी हैं, ये रियल नहीं है, ये अभी जा करके नाटक करके मौज कर रहे हैं, खा पी रहे होंगे, नाटक दिखाया, और ये पार्टधारियों को के पार्ट को देखने वाला दुखी हो गया। हमको भी बाबा कभी कभी हंसता है, मुस्कुराता है ऊपर से देख करके कि मैंने तो इसको पार्ट के लिए भेजा था, और पार्ट बजाते बजाते एक दूसरे के, ये मेरा संबंधी मर गया, ये हो गया, ये हो गया, रो रहा है, परेशान हो रहा है, अरे था तेरा कहाँ, ये तो पार्ट मिला था, पार्ट बजा लिया, पूरा हो गया, तुम क्यों दुखी हो रहा है। तो बाबा भी कभी कभी ऐसे ही, जैसे दादी ने जब देखा कि ऐसे ऐसे इन्वॉल्व हो गए लोग और इतना दुखी हो गए, तो दादी ने कहा ये दुख की थीम दिखाने के लिए मैंने थोड़ी तुमको बिठाया था देखने के लिए, बंद करो इसको, नहीं देखना। बाबा भी कभी ऐसे ना कहे, देख बंद करो ये नाटक, नाटक तो बंद नहीं होगा, नादि अविनाशी है, लेकिन इस नाटक के अंदर कितना वंडरफुल बाबा को दिखाई देता है, बहुत एक्यूरेट पार्ट है। और अगर इसके अंदर कोई नुक्स निकालता भी है तो बाबा कहता है ड्रामा की नुक्स नहीं निकालता है, क्रिएटर की निकालता है। बाबा तो क्रिएटर डायरेक्टर है ना, जब डायरेक्टर क्रिएटर की सीन चल रही है और सीन के अंदर हम कहें ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं लगता है, बाबा ऐसा कैसे करे, तो बाबा कहता हर बात में कुछ न कुछ राज है, रहस्य है, तुम इनको देख करके क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, साक्षी दृष्टा बनो। ये स्टेज है साक्षी दृष्टा की, जो नॉलेजफुल है, जिनके पास ज्ञान है, आत्मा परमात्मा चक्र सृष्टि चक्र पार्ट कर्म सबका जिसके पास ज्ञान है, और जिसने ज्ञान का गहराई से मनन किया है, चिंतन किया है, जो ज्ञान की गहराई में गया है, वो हर एक के पार्ट को देखते हुए बहुत निश्चिंत और एक रस स्थिति में रहता है। चेक करना आप सभी कि मुरली हम रोज सुन रहे हैं, ज्ञान रोज सुन रहे हैं, लेकिन क्या मैंने इस ज्ञान का स्वरूप अपने जीवन में उतारा है? पता चलता है ये ज्ञानी तो आत्माएं हैं, या कोई भी बात देख करके क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये बाबा कहता है ये क्या क्यों कैसे की क्यों लगा करके। दादी हंसे में एक बात कहती है, सुनाओ क्या कहती है गुलजार दादी, का करने वाला कौवा, ये भाषा ही अच्छी नहीं लगती। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, इन प्रश्नों के व्यर्थ की क्यों को फ्लिस्टाप लगाना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा। ये है ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान है और फिर भी मेरी बुद्धि में हलचल है, प्रश्न है, उथल पुथल है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, स्थिर नहीं हो रहा, तो ज्ञान किस लिए है? हम कहते हैं हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं सिर्फ, या ज्ञान को जीवन में उतारा भी है? तो ज्ञानी तू आत्माएं माना समझदार, और समझदार वो हैं जिनकी स्थिति अचल है, अडोल है, एक रस है, निश्चिंत है, जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा था। प्रैक्टिकल मिसाल सुने होंगे आपने, कितने पेपर बाबा के आगे है, आपके आगे तो कोई पेपर नहीं, हमारे आगे क्या पेपर है, कोई पेपर नहीं। छोटी मोटी बातें आती हैं, बाबा बैठा है, दादियां बैठी हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पालना मिल रही है, पार हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई था ही नहीं उदाहरण, सारी बहनों की इतनी बड़ी सभा, उसकी जवाबदारी, 400 बहनें संगठन में, कोई के कैसे संस्कार, कोई के कैसे संस्कार, जब पेपर आया तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पेपर बहुत बड़ा बाबा के आगे आया। जब कराची से यहाँ आए मई में 1950 के अंदर, तो 1.5 साल जो पेपर आया ना, वो पेपर अगर किसी के सामने आ जाए ना, 1 साल एक दिन का पेपर नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं, सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, दवाई कुछ नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, सारा जो लाए थे वो खत्म हो गया, कुछ भी भंडारे में नहीं, और कोई देने वाला नहीं, जो देने वालों ने कहा था वायदा किया था वो भी सब मुकर गए। उन्होंने को तो यही था संस्था टूट जाएगी और ये जहां जहां हमारी बच्चियां जो इनके पास गई हैं अभी वापस आ जाएंगी। लेकिन बाबा एकदम निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह, आपने एक बाबा का फोटो देखा होगा हिस्ट्री हाल में जाना, बाबा एक पहाड़ी के ऊपर ऐसे लेटा हुआ यार, बहुत मस्त स्थिति है वो, ऐसी निश्चिंत स्थिति उस बेगरी पार्ट में एक बाप को रहे जिसके 400 बच्चे खाने वाले हों, चारा ना भंडारे में न हो, कैसी स्थिति बनाई होगी बाबा ने, क्या ज्ञान था वो। शिव बाबा तो निराकार, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा को सुनना पड़ा कि अब देखें क्या चलता, कैसे चलेगी संस्था, और कहता है ये उसके बच्चे हैं, पालने वाला वो है, इतना निश्चय, अच्छा लडोल एक रस, और एक दिन भी किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया। पेपर इसलिए लिया, पेपर इसलिए आया कि नहीं तो ये बच्चे सेवा पर निकलते ही नहीं, अगर वो पेपर नहीं लेता ना तो सेवा पर नहीं निकलते। ये जो आज इतना विस्तार हुआ है, जगह जगह देश विदेश में केंद्र खुले हैं, उस पेपर की बदौलत इन बहनों ने ज्ञान दान करना शुरू किया। बाबा ने कहा, अरे बच्चे तुमको इतने रतन दिए हैं, तुम कहते हो धन नहीं, लिख दो ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पैसा एक नहीं है और अखबारों में निकल रहे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ज्ञान धन, गुणों का धन, चरित्र का धन, इतना ऊंचा धन, वो धन क्या इसके सामने, वो तो धूल है। इतना निश्चय, इतना नशा, जाओ बच्चे इसका दान करो। ले गई चित्र उठा करके बहने, जमुना के गंगा के किनारे पर बैठ करके, रेत पर बैठ करके, और संदेश देना शुरू किया। अरे बड़े बड़े लोग देख करके, जो आज बाबा ने कहा ना बच्चे साक्षात्कार हो जाएगा, जाओ इन ब्रह्मा कुमारियों के पास, वो दृश्य था वो स्थापना का जिसको बाबा याद कर रहे थे। जो देखे उनको साक्षात्कार हो जाए, कहां से देवियां आई हैं, कहां से अवतरित हुई हैं, इतनी प्योरिटी, इतनी लाइट, इतनी इनोसेंट, दुनिया का कुछ पता नहीं, ज्ञान तो दूर रह गया उनके शकल को देख करके। लोग, बहन जी आप यहां क्यों बैठी हैं, आपको सेंटर बना के देते हैं, आपको स्थान बना के देते हैं। सेंटर खुलने लगे, दिल्ली में खुला, कानपुर में खुला, पंजाब में खुला, कई सेंटर्स उसी इलाहाबाद के कुंभ मेले से खुल गए, स्थापना हुई, ज्ञान दान देना शुरू कर दिया, सेंटर्स खुले और आज कहां पर पहुंच गए। वो दिन और आज, अगर बाबा थोड़ा सा भी हिल जाता, एक बाबा अगर हिल जाता तो पूरा यज्ञ खत्म हो गया होता। लेकिन निश्चय की विजय है, भगवान हमारा साथी है, उसका यज्ञ है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। बड़े नशे की कई बातें हैं बाबा की उस समय की, तो आप समझ सकते हो ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को कैसे यूज किया। समझ थी कि ये यज्ञ अविनाशी है, और जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हुई तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा, भंडारा भरपूर रहेगा, और आज देखो भंडारा भरपूर है, चल रहा है यज्ञ, प्रभु लीला चल रही है। जानकी दादी क्या कहती, बैठे बैठे प्रभु लीला चल रही है, हजारों आ रहे हैं, खा रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, कोई दादी मिले या न मिले, सारी भट्टियों में एक दादी भी नहीं मिली, और इतना रिफ्रेश होके लोग गए, जो बात मत पूछो। ये लास्ट भट्टी थी जिसमें चारों दादियां थी, बड़ी दादी भी आ गई। तो पालना बाबा की अव्यक्त रूप में हम सबको मिल रही है। बाबा अब चाहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान का स्वरूप बने, सिर्फ ज्ञान का वर्णन और चिंतन नहीं करें। योग की शक्तियां, ज्ञान की सब्जेक्ट जिसने अपने जीवन में उतारी, उसकी निशानी यह दिखाई देगी, वो कहीं पर भी किसी भी बंधन में बंधेगा नहीं। सेवा करो, खूब करो, जितनी कर सकते हो करो, सबके साथ स्नेह रखो, सबके साथ मिलो जुलो बैठो, लेकिन कोई आत्मा अपने प्रभाव में प्रभावित न कर दे। किसी में फंसना नहीं, किसी को फंसाना नहीं, ये ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है। ज्ञान इसीलिए बाबा दे रहा है, हर आत्मा जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे। ज्ञान हमको मुक्त बनाना चाहता है। योग किस लिए हम कर रहे हैं, इतनी भट्टियां करने के लिए क्यों भागते हैं? योग एक मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, जो इसके अंदर अनेक प्रकार की मैल खाद पड़ गई है उसको निकालना है। इसलिए बाबा कहता बच्चे योगी माना बिल्कुल प्योर, स्वच्छ, साफ, सतो प्रधान। तो योग की गहराई यही है कि जितना हम बहुत शक्तिशाली, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा पावरफुल योग करेंगे, उतना आत्मा की मैल निकलती जाएगी, बहुत स्वच्छ बनती जाएगी, बहुत पवित्र बनती जाएगी, उसके चेहरे से ही लगेगा। आज दादी को देखो, गुलजार दादी के चेहरे को देखो, सिर्फ कुछ नहीं दूसरा देखो, एकदम प्योर, जैसे सतयुग के देवताओं का वर्णन करते हैं ना, इनोसेंट है, कोई विकार नहीं, कुछ पता नहीं, जैसे ऐसा हमारी दादियां बन चुकी हैं, चेहरा दिखाता है ना, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल इनोसेंट स्थिति, पवित्र स्थिति। इनोसेंट माना विकारों से बिल्कुल अनजान है। योगी आत्माएं जो योग कर रही हैं, योग अभ्यास कर रही हैं, वो वर्तमान समय योग करते करते ऐसी प्योर बन जाएं, स्वच्छ बन जाएं, जो उनकी मैल उसकी समाप्त हो जाए। जो देह मान की रगे हैं ना, आधा कलप से देह मान ने फुल अटैक किया है। एक जगह हम अभी अभी गए थे तो भट्टी चल रही थी, तो बोला मेरे को कि यहां पर जो भट्टी चलती है, कमरे में 45 लोग बैठे थे, योग कर रहे थे, डेढ़ घंटे का अखंड योग था, डेढ़ घंटे एक ग्रुप, डेढ़ घंटा दूसरा। तो हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं सब बैठ करके, कमरा चारों तरफ से बंद है, ऊपर एसी चल रही थी, एक दीपक और चारों तरफ से सब बैठे हुए ऐसे दीपक की तरफ, कोई लाइट नहीं थी, और एक कमेंट्री चल रही थी, कह रहे यहां पर जो बैठे हैं ना, 63 जन्मों के विकर्म विनाश की भट्टी चल रही, लगन देखो। इतना डेड साइलेंस था चारों तरफ से, संकल्पों की वजह से हलचल नहीं थी। मैं जब उसमें घुसा कमरे में, एकदम सब उसी ज्योति की तरफ बैठे हैं, कमेंट्री चल रही, एक एक जन्म के विक्रम विनाश कर रहे हैं। आप सबको ये लगन है, यहाँ आए हो कि हमारे सब विक्रम भस्म हो जाएं, आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाए, ऐसी तपस्या करूं, ऐसा योग करूं, कोई दाग मेरे में न रहे, न ईर्ष्या का, न नफरत का, न घृणा का, न वैर का, न बदला लेने का, न कोई आसक्तियों का, न उत्तेजनाओं का, ये बहुत सारे इस पे दाग पड़ गए हैं। आत्मा पर ये जो दाग पड़ गए हैं ना, यही दागों ने इसको बहुत मैला बना दिया है। योग की भट्टी में इन दागों को खत्म करना है, एकदम योर प्योर, मैं जो हूं जैसी हूं, वो इस भ्रकुटी आसन पर चमकने लगूं, देहमान का अंश भी समाप्त हो जाए, नेचुरल आत्मान स्टेज बन जाए, जिसको कहते हैं योग। तो ऐसी भट्टी करो, ऐसी तपस्या करो जो सचमुच अंग अंग सुगंधित हो जाए। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल, अंग अंग सुगंधित, कोई उत्तेजना नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई आवेश नहीं, शीतल काया वाले योगी। जब बाबा के साथ एकदम चटक जाएंगे ना, चटक जाएंगे, तो बाबा का संग का रंग लग जाएगा। एक बाबा के प्यार में खो जाओ, लौलीन हो जाओ, लगन में मग्न हो जाओ, पता ही नहीं चले कोई आजू बाजू में है। कई बार जब ऐसा योग करते हैं ना, तो ऐसे हाथ को भी हिलाना पड़ता, पता नहीं है मेरा कि नहीं है, शून्य अवस्था नहीं है वो। वो बाबा ने कल कहा ना, शून्य अवस्था, देखो कहीं यहां पर बैठे ना ऐसे ऐसे करते, ये शून्य अवस्था है, पता ही नहीं मैं कहां बैठा हूं। इतने अच्छे माहौल के अंदर भी अगर नींद आ रही है, तो जरूर कोई बोझ होगा ना कर्मों का। अगर योगी आत्माएं लौलीन स्थिति में बैठे, लगन में मग्न हो जाए, तो ये शरीर एकदम ऐसे लगेगा, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये वस्त्र है, मैंने इसको पहना हुआ है, भान समाप्त हो जाएगा। इतनी सुखद अनुभूति है ये, जिसको योगियों के अनुभूतियों का वर्णन किया गया है, योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। परमानंद, गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गया हुआ है, साकारी याद है, खेलपाल रूरियान, वो साकारी याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। लेकिन जब एक मग्न स्थिति बनती है, एकदम लौलीन स्थिति बन जाती है, बाबा के प्यार में आत्मा खो जाती है, तो परमानंद का अनुभव करती है, कोई उसकी भेंट कर ही नहीं सकता है। इस आनंद की भेंट में कोई दूसरा है भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई रस, कोई आनंद शारीरिक कर्मेंद्रियों का आत्मा को खींच नहीं सकता। क्योंकि आप सबको मालूम होगा, इस शरीर के सभी हार्मोन्स आनंद की स्थिति से डेवलप होते हैं। अगर आनंद की स्थिति आत्मा की बहुत अच्छी है, तो शरीर बहुत हृष्टपुष्ट, बहुत शक्तिशाली रहता है। और जिसके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते, बार बार शोक दुख लहर आती रहती, आनंदित स्थिति नहीं रहती, उसका शरीर बेढंगा हो जाता, रोगी हो जाता। इसलिए आनंदित स्थिति का अनुभव जरूर करना चाहिए, और वो आनंद जो परमानंद है बाबा की याद में, जब मग्न हो जाओगे, लौलीन हो जाओगे, बस बाबा बाबा बाबा, सुन्न अवस्था नहीं, शून्य अवस्था नहीं, मिलन की अनुभूति का रस है। उस अनुभव के रस में खो जाना, बस आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जो बाबा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत के पीछे बहुत गहरा रहस्य है कि मेरे एक एक बच्चे जिस स्वरूप में इस सृष्टि पर उतरे थे, आदि स्वरूप, वही अंत का स्वरूप बने और वापस चले। श्री कृष्ण की आत्मा जब उतरी, फर्स्ट योग बल से जन्म लिया, कितनी पावन थी, कितनी प्योर थी। क्या उसके लिए गायन करते हैं कि जब उसने जन्म लिया तो चारों तरफ से लाइट हो गई, प्रकाश छा गया, मां को चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया, फिर वो आत्मा आ गई, सब ताले खुल गए। स्थूल ताले थोड़ी थे कोई, बुद्धि के ताले खुल गए, लाइट हो गई, अंधेरा दूर हो गया। इतनी प्योरिटी की ताकत कहां से लेके गई थी वो आत्मा? संगम से लेके गई थी, उस तपस्या से, उस योग से आत्मा पावन बन के गई और उससे से जन्म लिया। तो हम सभी इसीलिए भट्टी कर रहे हैं कि वो ताकत आत्मा के अंदर आ जाए, जो आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध सतो प्रधान बन जाए और बाबा के पास जाके फिर सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आए। तो योग की सब्जेक्ट हमको बहुत बहुत सतो प्रधान पावन बनाने के लिए है, जिसमें सब पुराने संस्कार, पुरानी आदतें मिट जाएं। कोई भी पुरानी आदत वापस रिटर्न में हमको परेशान न करे, देखना अपने आप को। इसके लिए बहुत गहरी महसूसता चाहिए, सहज परिवर्तन नहीं होता, भट्टी क्लास से नहीं होता, उसके लिए अपने आप को बहुत पढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एकांत में बैठ करके अपने आप को निहारना। दादी हमको एक बहुत अच्छा बात में कहती थी, पुरुषार्थ, कभी कभी पूछते दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो, तो दादी कहती थी मैं अपने इस हीरे को ऐसे हथेली पर रखती हूं और देखती हूं चारों तरफ से, मेरे इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है, कोई भी प्रकार का कहीं पर भी कोई फ्लो तो नहीं है। और बाबा मुझसे कहता बच्ची ये हीरा बिल्कुल प्योर बन गया है, बहुत शुद्ध है, कोई फ्लो नहीं, फ्लोलेस है। दादी का अनुभव लास्ट अनुभव यह था। हम सभी भी यहां पर भट्टी के अंदर अपने अपने हीरे को देखें, दूसरा क्या करता कोई को नहीं देखना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, वो उसने, कुछ नहीं देखो। हमको टाइम बाबा ने दिया है 3-4 दिन, अपने इस हीरे को ऐसे ले आओ सामने और एकांत में बैठ गए, भले इसके सभा में हो लेकिन एक के अंत में याद में बैठ जाओ और अपने आप को देखो, मेरे अंदर कोई इम्प्यूरिटी है, कोई भी दाग है, किसी भी प्रकार, किसी से भी, क्या है, किस लिए है, अभी नहीं खत्म करूंगा तो कब खत्म करूं, कौन समय आएगा। अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखो और बिल्कुल मैं प्योर बन जाऊं, स्वच्छ बन जाऊं, एकदम इनोसेंट आत्मा बिल्कुल विकारों से हो जाए, इसके लिए तपस्या करो, योग की गहराई को अनुभव करो। कोई दूसरे संकल्प विकल्प नहीं, ऐसे नहीं बार बार चिंतन करते रहो योग में, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, उससे बाबा की बच्ची हूं, कई माला जैसे जपते रहते, मंत्र जैसा, ये योग थोड़ी है कोई, ये तो एक बेस है, आधार है। लेकिन योग माना गहन अनुभव, लाइट और माइट स्वरूप की स्थिति, जिस स्थिति के अंदर और कोई संकल्पों की हलचल है ही नहीं, मग्न स्थिति में बैठ करके बाबा की शक्तियां अनुभव करना और अपने रिफ्लेक्ट करना, उस शक्तियों को रिफ्लेक्ट करना, जिसको हम कहते हैं योग का प्रयोग करना। अपने भी संस्कार चेंज हो जाएं, अपने भी नेचर के अंदर एक ब्यूटी आ जाए, स्वच्छता आ जाए, और कहीं पर भी कोई है ऐसा विघ्न, दूसरों के द्वारा जो आ रहा है, प्रकृति के द्वारा जो आ रहा है, व्यक्तियों के द्वारा आ रहा है, उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करो। शांति, पवित्रता, शक्ति जा रही है और वो आत्मा चेंज हो रही है। प्रयोग करो इसका, लेकिन बहुत शुभ भावनाएं चाहिए, कोई मतलब नहीं, स्वार्थ नहीं, हदे नहीं तो शक्ति प्रयोग नहीं होगी। सोचोगे हमने तो 10 दिन मनसा सेवा की, 30 दिन कर ली, कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगा, क्योंकि आपका कोई न कोई हद है, स्वार्थ है। इसलिए बेहद में बैठ करके बाबा की लाइट माइट लेना, आत्मा को बहुत शुद्ध सतो प्रधान शुभ भावना संपन्न बना करके फिर लाइट को दूसरों तक पहुंचाना, यह है प्रयोग। और ऐसे प्रयोग से हमने देखा है कई आत्माएं परिवर्तित स्वतः परिवर्तित होती, विघ्न खत्म हो जाते हैं। जो हमारे मार्ग में विघ्न है, रुकावटें हैं, वो ऐसे लगता है कुछ नहीं है, समाप्त हो गई। योग की सब्जेक्ट, फिर तीसरी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना, धारणाएं, उसके लिए बाबा बहुत मेहनत कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। 43-45 साल से अव्यक्त रूप में केवल धारणाओं पर ध्यान, क्यों, एक सत धर्म की स्थापना करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवता बनाने के लिए कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनैलिटी, कितने दिव्य गुण चाहिए, उसके लिए बाबा अभी अव्यक्त रूप में हम सबसे मेहनत कर रहा है, जिससे एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो। ये धारणाएं जितनी भी हम कर रहे हैं वो सत्य धर्म के लिए है। एक सत धर्म आए तो अपने आप को ये बहुत अंदर से देखना है कि मेरे अंदर वो धर्म माना धारणाएं कहां तक आई हैं, कितनी प्योरिटी की रॉयल्टी है, कितनी हर्षित मुक्ता है, कितनी दिव्यता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी रूहानियत है, ये सब जो ईश्वरीय धारणाएं हैं वो हमारे जीवन में आ जाएं, जिससे देवता धर्म की स्थापना हो सके। धर्म की बात को धारणा के रूप में देखकर उसके लिए बहुत सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। धर्म ऐसे ही नहीं स्थापित होते, धर्म स्थापकों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो हम सब एक सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए धारणाओं पर ध्यान देना और अपने धर्म के लिए कहेंगे, कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए, दर्द पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हमारी धारणाएं उसके लिए कहीं भी उसमें समझौता नहीं है, धारणाओं में समझौता नहीं है। कितने लोगों ने कहा, अरे बाबा आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, बहुत अच्छी बातें हैं, आप सिर्फ एक बात के लिए छोड़ दो बस, पवित्रता की बात नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा इसी से तो सतयुग आएगा, मूल फाउंडेशन ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कहां से बनेगी। सब कुछ सहन किया उसके लिए बाबा ने, गालियां खाई, कोर्ट कचहरियां हुई, कितना विरोध हुआ, कितने टकराव हुए, कितनी बदनामियां हुई, लेकिन बाबा ने इस सब्जेक्ट को कभी भी लूज नहीं किया। बच्चे मर जाना, यहां तक बांधेलियां आती थी, रोती थी, बाबा कहता था बच्चे उनको बोल दो मैं तुम्हारे बर्तन मांजूंगी, कपड़ा धोऊंगी, तुम्हारे साथ नौकरी जैसे करूंगी, लेकिन मैं इस विकार को नहीं दूंगी, ये आप करना तो दूसरी जगह जाओ। कितना एक बाबा का एक दृढ़ निश्चय था, ये प्योरिटी ही फाउंडेशन है नई दुनिया की, और इसके आधार से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय टिका हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी समझौता नहीं है। बाबा के बच्चे बनना है बनो, नहीं बनना नहीं बनो, सेवा करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, लेकिन प्योरिटी फर्स्ट, उसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। उसके लिए कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, इसमें आप कभी भी नहीं सोचना कि चलता है, फलाना भी करता, उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, ये चलता नहीं है। बाबा कहता है ये धर्मराज की सजाएं निश्चित करता है, इसलिए बहुत धारणाओं पर ध्यान देना, चाहे वो खान पान की धारणाएं, वो सब जितनी धारणाएं हैं, संग की हैं, खान पान की हैं, रहन सहन की हैं, जितनी भी धारणाएं, उन सब का कारण है प्योर बनना। प्योरिटी के लिए सब हम नियम पालन करें, अगर कोई सब नियम पालन करा और प्योरिटी में अलबेला है तो नियम सब बेकार है। इसलिए ध्यान देना कि बाबा ने हम सबको धर्म के लिए धारणाएं सिखाई हैं, और राज्य की स्थापना के लिए कहता है बच्चे राजधानी बनाने, इसलिए सेवा करो। मेरे तक ज्ञान सीमित रहेगा तो मैं क्या अपने पर राज्य सिर्फ करूंगा? जो मिला है उसको दान करो, दूसरों को दो, सेवा माना सुख दो सुख लो, जो मिला है उसको बांटो। तो इसलिए चारों सब्जेक्ट बाबा ने बनाई, राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना, वर्तमान समय जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव और सतो प्रधान स्थिति का अनुभव। इसके लिए मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट बाबा पढ़ा रहा है। और एक कुल की स्थापना हो, एक ब्राह्मण परिवार की स्थापना हो, जिसके आधार से सतयुग के अंदर राजा माता पिता के रूप में राजा रानी है और सारी प्रजा बालक के रूप में परिवार है। कैसे परिवार चलता सतयुग का, उसके लिए बाबा ने सुनाया है। जैसे मधुबन के अंदर भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट है, कोई पैसे की लेन देन नहीं है, पारिवारिक रूप है, एक दे करके दूसरा ले लेता है, एक दूसरे को सहयोग देता है, एक एक डिपार्टमेंट बनी हुई है और एक राजा रानी की छत्र छाया के अंदर इतना बड़ा परिवार चल रहा है। एक दादी दीदी प्रशासिका के रूप में, बाकी सब कारोबार एक निर्विघ्न कर रहे हैं। सतयुग की सिस्टम में पूरा ही विश्व एक परिवार कहलाएगा और उसके लिए बाबा भाई हम सबको परिवार की स्थापना के लिए, ये परिवार है हमारा, परिवार में कभी भी कोई की कमियों को देखना नहीं है। होंगी सबके अंदर कुछ ना कुछ नीचे ऊपर बातें होंगी, लेकिन हमारा परिवार है। अगर मान लो आपके बच्चे हैं, अगर कुछ गलत भी करके आते हैं तो माँ ये सोचेगी इसके बाप को भी पता नहीं चले, वो समाएगी फैलाएगी नहीं। परिवार के सदस्य की कोई भी कमी कमजोरी वायुमंडल में फैलाना माना परिवार का विरोधी। कमी कमजोरी है भी, जानता भी है, लेकिन ये मेरा परिवार है इसलिए मेरा समझ करके उसको समा लेना और उसको समाप्त करने के लिए बहुत शुभ चिंतक वृत्ति है, बहुत शुभ भावना है। जिस प्रकार से मैं सहयोगी बनूं, सहयोगी बन करके उस बात को समाप्त कर दूं, ये है परिवार की निशानी। इसलिए बाबा कहता बच्चे इस परिवार के अंदर कभी किसी की कमी और कमजोरियों को मत देखो, अगर दिखाई दे रही हैं तो उनको समाप्त करने के लिए योग करो, शुभ भावनाएं रखो, जहां से भी वो सुधर सकता है सुधारने का प्रयास करो, उसको वातावरण में फैलाओ नहीं, नहीं तो कीचड़ गंदगी फैल करके वायुमंडल को दूषित कर देगा। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो इसलिए एक कुल, एक राज्य, एक धर्म, उसकी स्थापना के लिए बाबा की इतनी सारी पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, उसको समझें और समझ करके उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएं। ओके, ओम शांति।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की गहराई को सहज शब्दों में डाल दिया ना, सहज सहज करके समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि इनका महत्व जीवन के साथ क्या है, क्यों आवश्यक है इसको उतारना, कोई भी सब्जेक्ट ढीला नहीं छोड़ना है। तो ऐसे राजीव भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, सबको अच्छा लगा ना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। ये भी हमारी आत्मा की प्यास आपने आकर तृप्त की है, तो बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आप हमारे बीच एक बार पुनः हों। कब होंगे वो तो देखेंगे, लेकिन एक बार पुनः आए और भी हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई का।